प्रिय भजन भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज 2 अगस्त 2020 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आज मैं आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 का 36वां श्लोक पढ़ूंगी और उसका अर्थ भी आप जानेंगे। प्राय हम देखते हैं और बोलते हैं पाप पाप पाप। पाप क्या होता है? प्रश्न पैदा होता है पाप क्या होता है? भगवान जी बताते हैं पाप क्या होता है या पापी भी कैसे तय जाता है। 36वें श्लोक में भगवान कहते हैं अपनी चेद सी पाप अभ्या सर्वे भ्या पाप कृतम मां सर्व ज्ञान पल नैव विजिनम संते शशी। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तैर जाएगा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब के लिए, सब विश्व के लिए, मानव जाति के लिए एक संदेश दिया है कि पापियों से पापी भी जो है, अधिक पापी है, वैसे महापापी को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, सिर्फ नाशवान की कामना बाधक है। भगवान कहते हैं कि दो विभाग है, एक जड़ है एक चेतन है। ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबद्ध हैं। अतः जड़ जो है मान लो अंधकार है और चेतन जो है वो मान लो प्रकाश है। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती है। समझ आ गई होगी आपकी कि जो भी हम कार्य करते हैं संसार में, जो भी कार्य हो रहा है ये जड़ के विभाग में आता है। चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। मतलब भगवान निर्गुण निराकार निर्लेप रहते हैं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि जड़ अलग है चेतन अलग है तो हम पाप भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पाप हो भी गया है तो ज्ञान होते ही वो पाप नष्ट हो जाता है। यथे धांसी सुमिद्ध अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि इंद्रियों को सर्वथा भस्म कर देती है ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। न ही ज्ञानेन सदेशं प्रवृत्तिर्या विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। तत्व ज्ञान को पाने के लिए कर्मों का त्याग करना पड़ता है और अनुभवी और शास्त्रज्ञ महापुरुष के शरण में जाना पड़ता है। यही तत्व ज्ञान कर्म योगी को सब कर्म करते हुए अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के जैसे कहीं जाना नहीं पड़ता, कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। आगे भगवान कहते हैं श्लोक 39, श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परा संतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा परम शांति मचेनादि गच्छति। जो जितेंद्रिय है, जो साधन प्रायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को भी प्राप्त हो जाता है। जिसकी इंद्रियां वश में होती है वही साधन प्राण होता है। जो साधन प्राण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है। ऐसे पूर्ण श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति में वक्ता पर तथा सिद्धांत पर श्रद्धा विश्वास मुख्य कारण है। रामायण में भी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिनो भवानी शंकरो बंदे। श्लोक 40। संशयात्मा विनश्यति मायम लोकोस्ते न परो न सुखम संशयात्मना। विवेक ही और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न ये लोक हितकारक है, न परलोक हितकारक है और न ही उसे सुख मिलता है। विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में अवश्य है। संशयात्मा मनुष्य में विवेक और श्रद्धा नहीं होते, अर्थात ना तो वो खुद जानता है और ना दूसरों की बात को मानता है। ऐसे मनुष्य का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है, उसका ये लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी। श्लोक 41। योग समस्त कर्मानं ज्ञान संचिन न संशयम् आत्मबंधन न कर्माणि निवर्धन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। श्लोक 42। तस्मात ज्ञान समभूतम एतत् ज्ञान सनात्मना चित वैनम संशयम योगा अतिष्ठो तिष्ठा भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये गीता अध्याय 4 का अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सब संशय छोड़ दे और खड़ा हो जाए युद्ध कर। हमें भी ये संदेश है कि भगवत कार्य में खड़े हो जाओ, संशय मत करो और जो ये संसार में हमें हमारा जो युद्ध है उसमें उसको लड़ने के लिए उसको जीतने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो तत्सदिति श्रीमद भगवत गीता सुग्रम विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम तत्थ अध्याय। जैसे मैंने पूरा अध्याय नहीं पढ़कर सुनाया, जो श्लोक हम सब के लिए महत्वपूर्ण है जिन पर हमें अवश्य चलना है, वे श्लोक मैंने आपको पढ़ के सुनाए। तो इन श्लोकों से आपको बहुत कुछ मिला है, उस पर ध्यान दीजिए। एक श्रद्धा विश्वास मिला, एक क्या मिला कि कभी संशय मत करो, संशय आत्मा विनश्यति। और श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तो कभी भगवान नहीं मिलेंगे। और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान जो है बड़ा ही पवित्र है। और ज्ञान कैसे मिलता है, ऐसे योगी के पास जो महान है, जिससे सब संशय दूर हो गए हैं, जो तत्व ज्ञानी है। इन शब्दों के साथ मैं अब आपको एक भक्त के संस्मरण सुनाने जा रही हूँ। हेडिंगा गुरुदेव जी से प्रथम मिलन। सर्वप्रथम श्री गीता माँ जी तथा शारदा माँ सेवा संघ को शारद वाणी के प्रयासों की बधाई देता हूँ। सन 1904 की बात है, राजू जी कुल्लू एग्रीकल्चर महकमे में कार्यरत थे तथा खड़ा बाजार रामशिला में रहते थे। होली का दिन था, होली के रंगों से बचने के लिए सुबह ही भेखली माता मंदिर जी कुल्लू पहाड़ी पर स्थित कर चले गए। वहाँ पर सारा दिन भजन कीर्तन में मस्त रहे। शाम को इसमें माँ देवी तीर्थ चले गए, वहाँ भी वैष्णो माता की गुफा में भजन कीर्तन किया और वापिस आने लगे। कभी मंदिर के अंदर से श्री स्वामी जी ने अब आज दीखे हो प्रसाद पाकर जाना। स्वामी जी मंदिर से बाहर आए, उन्होंने मेरे दोस्तों को प्रसाद दिया जिसमें दो दो चुपाने तथा उबले हुए आलू थे। जब मुझे प्रसाद देने लगे तो तीन चार बार मुझे सिर से पैर तक निहारा, फिर मुझे प्रसाद दिया। तब तो पश्चात में अपने घर आ गया। सुबह 4 बजे मुझे स्वप्न में आया कि गुफा में माता वैष्णो जो रहती है वो गुफा से बाहर आई और बिल्कुल स्वामी जी की तरह मुझे निहारा और प्रसाद दिया। स्वामी जी की जगह मुझे माता दिखाई दी। इसी दिन से मैं बाबा जी के साथ मंदिर में ही रहने लगा। स्वामी जी का आजाद प्यार मिला तथा मैं स्वामी जी का होकर रह गया। ये सन 1904 की यादगार है। श्री महाराज जी के प्रति मेरा विशेष लगाव हो गया तथा मैं भी मंदिर में उनके साथ रहने लगा। स्वामी जी मुझसे अत्यंत प्रेम करते थे। कई बार मंदिर में हमारे घर भी आया करते थे। जब भी स्वामी जी ने मंदिर हमारे घर आना होता था तो पहले ही हमें सपन द्वारा आभास हो जाता था, क्योंकि उन दिनों टेलीफोन आदि नहीं होते थे। उनके आने पर हम बहुत ही आनंद मिलता था। साथ ही मेरे दोस्त सुभाष जी का घर भी था, वहाँ भी बराबर बैठ जाया करते थे। एक बार की घटना है कि मैं स्वामी जी के साथ बाजार में एक साइड पर खड़ा था। तभी एक हमारे ही शहर का दुकानदार आया और स्वामी जी को एक तक देखने लगा। एकदम स्वामी जी के चरणों में झुक गया तथा कहने लगा, मैंने पहचान लिया। एक बार मुझे आप पठानकोट में मिले थे। मैंने आपको साधारण वेशभूषा में देखकर समझा कि कोई भिखारी बाबा जी है तथा एक सिक्का आपके हाथ में रख दिया था। आपने मेरी तरफ देखा था और सिक्का आसमान की तरफ फेंक दिया था। मैंने भी आसमान की तरफ देखा, सिक्का गायब हो गया था। फिर जैसे ही मैं आपको दोबारा देखने लगा, आप एकदम वहाँ से गायब थे। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एकदम आप कैसे गायब हो गए। मैं बड़ी देर तक आपको ढूंढता रहा परंतु आप नहीं मिले। आज कई वर्षों बाद आप यहाँ मिले, मुझे बताइए आप है कौन। इस पर स्वामी जी ने कहा, अरे आपको गलती लगी होगी, मैं भी आपकी ही तरह साधारण सा इंसान हूँ। परंतु वह आदमी रो रो कर कह रहा था, बाबा मुझे आशीर्वाद दो तथा माफ करना, मैं आपको पहचान ना पाया था। सन 1980 में मेरा और मेरी पत्नी का तबादला मंदिर से कुल्लू हुआ। कुल्लू में हमें रहने के लिए घर न मिला तो हम 20 दिन परिवार सहित बाबा जी के पास मंदिर में रहे। 20 दिन तक श्री महाराज जी ने हमारे छोटे छोटे बच्चों को प्रेम पूर्वक संभाला तथा बच्चे भी स्वामी जी के साथ प्रसन्न रहते थे। स्वामी जी प्रत्येक नारी को माँ ही कहकर पुकारा करते थे। स्वामी जी के साथ हमें हरिद्वार यात्रा करने का अवसर भी मिला है। एक बार हम श्री महाराज जी की तमाम तथा अन्य भक्तों के साथ 22 दिनों तक हरिद्वार में रहे थे। स्वामी जी रोज सुबह कन्या पूजन करवाते तथा कन्याओं का चयन होने के बाद उसी जल को नामित ग्रहण करते तथा हमें भी करवाते थे। शाम को गंगा किनारे फूलों के फेरे तारे जाते थे। स्वामी जी खुद कभी स्नान नहीं करते थे लेकिन हम सबको गंगा स्नान हेतु भेजते थे। एक दिन मेरी पत्नी ने स्वामी जी से पूछ ही लिया, ये स्वामी जी आप स्नान क्यों नहीं करते हैं। स्वामी जी ने धीरे से कहा, माँ जी मैं ध्यान में ही स्नान कर लेता हूँ। फिर मेरी पत्नी ने गीता माँ जी से पूछा कि माँ क्या सचमुच स्वामी जी ध्यान में स्नान कर लेते हैं। तो श्री गीता माँ जी ने कहा, हाँ मुझे 12 साल हो गए हैं, मैंने स्वामी जी को स्नान करते नहीं देखा है। तुम कैसा लगता है कि जैसे अभी अभी नहा के आए हो। श्री महाराज जी एक महान आत्मा थे जो कि खुले तौर पर कोई चमत्कार नहीं करते थे तथा कहते थे, अगर बाबा चमत्कार दिखाने लग गया तो यहाँ लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी तथा बाबा द्वारा किया गया तप खत्म हो जाएगा। एक बार मेरे स्वामी जी के साथ शिव जी की मूर्ति विग्रह बनवाने हेतु दिल्ली जाना पड़ा था। मैं तीसरे दिन वापसी का कहकर स्वामी जी के साथ दिल्ली चला गया था, परंतु दिल्ली में ये काम नहीं बना और मूर्ति के लिए हमें स्वामी जी के साथ जयपुर जाना पड़ा। 6-7 दिन तक मैं घर वापस नहीं आया। तो मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गई कि ना जाने बाबा जी के साथ कहाँ चला गया, और साथ ही ये भी सोचने लगी कि साधु संत लोग हैं, ना जाने कहाँ के हैं और मेरे पति को कहाँ लेकर चले गए हैं। कई तरह की गलत धारणाएं उसके मन में आ रही थी। रात के 12 बजे का समय था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तथा स्वामी जी ने मुझे पीछे से अपनी दोनों बाजुओं से पकड़ा और मेरी पत्नी को सौंप दिया तथा कहने लगे, माँ जी संभालो अपने पति देव को, आपने मुझे गालियां देकर मेरा बुरा हाल कर रखा था। ये सुनकर मेरी पत्नी हैरान हो गई कि स्वामी जी को कैसे पता चला कि मेरे मन में क्या चल रहा था। इस प्रकार उन्हें दूसरे के मन का आवाज पहले ही हो जाता था। श्री महाराज के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। पृथ्वीराज शर्मा मंदिर। इन्हीं शब्दों के साथ गीता माँ जय माता दी।